संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जन बिचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम का 13वीं गाथा के उत्थानिका के कलश चल रहे हैं। 13वीं गाथा के ही क्यों, आगे का जो विस्तार से समय सार पूरा बताया जाने वाला है उसकी भूमिका के ये कलश है। कल कहा था कि व्यवहार में यद्यपि प्राथमिक भूमिका में उपयोगी है, लेकिन उसका अवलंबन जो हमें लेना पड़ता है कि हमें इस बात का बहुत खेद है। वो अवलंबन जब जितने जल्दी छूटे उतने जल्दी अच्छा है। और जो छठवां कलश है इसमें समय सार की मूल विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हैं। एकत्रे नियतस्य शुद्ध नैतो व्याप्तो यदास्यात्मनः पूर्णज्ञान घनस्य दर्शनमिह दिव्यान्तरे पृथक् सम्यक् दर्शनमेतदेव नियत आत्मा पावनम् इस कलश में कहा गया है कि मुझे नौ तत्व की संतति वाला समय दर्शन नहीं चाहिए, मुझे तो अपने एकत्व में जो निश्चित है शुद्ध नय वाला, शुद्ध नय का जो विषयभूत भगवान आत्मा है उसके आश्रय से उत्पन्न होने वाला सम्य दर्शन चाहिए। जिस गाथा की उत्थानिका का एक कलश है तो उस गाथा में ही ऐसा लिखा है कि भूय तीर्णाविगला जीवा जीवाय पुण्य पावन से आसर संवर निर्जर बंधु मुखोय समर्थ। इस सात तत्व की श्रद्धा को भूतात्मय से जानेंगे, सात तत्व की श्रद्धा को समाधान का और उसकी उत्थान का के कलश में कहते हैं कि हमें वो होनी चाहिए, है ना। बहुत से चित्त में प्रश्न खड़े हो सकते हैं, उसमें जो भूयत थे गुणा भी गदा लिख दिया ना, भूतात्मय से जाने हुए, तो भूतार्थ में से जाने हुए नव तक तो क्या है कि आत्मा बस। और वो कहते हैं कि नौ तत्वों में वो आत्म ज्योति गई हुई है। नव तत्वम गतत्व दीन एकत्वम न मुंचती, एक कलश है ना सातवां, उसकी नीचे की पंक्ति देखो, नव तत्वम गतत्व दी यदई कत्वम न मुंचती, कि जो नौ पने को प्राप्त हुई है, गतत्व दी है ना, नौपने को प्राप्त हुई है पर एकत्व न मुंचती, लेकिन उसने उसमें से एक पना नहीं छोड़ा है। तो वो कहते जो एक पना नहीं छोड़ा है वो मुझे वो चाहिए। वास्तव में तो इतनी बात है कि विकल्प वाली श्रद्धा मुझे नहीं चाहिए, निर्विकल्पक अनुभूति वाली श्रद्धा चाहिए। देखो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवध ज्ञान मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, तो पांच ज्ञान हुए ना, तो ये ज्ञान पांच हो गए ना। कहते ज्ञान ने पांच भेदों को प्राप्त होकर के भी ज्ञानत्व को नहीं छोड़ा है। देखो हरेक में ज्ञान है ना, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवध ज्ञान मनपर्य ज्ञान है, तो ज्ञानत्व को नहीं छोड़ा है। अब तुम ऐसा लिखो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ऐसे लिखो और फिर ऊपर से आप गणित तो आप जानते हैं पांच शून्य हो तो पांच शून्य को मिलकर एक शून्य हो जाता है ना। पांच शून्य का क्या मतलब होगी, बिना कोई अंक के हजार शून्य भी हो तो एक ही शून्य में सब समाहित हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। तो पांच दफे ज्ञान 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 ये क्या, एक ही ज्ञान है। बोलते बोलते है छे 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 क्यों, मैं तो बोहू जो है तो इसमें जो पांच दफे रिपीट हुआ है बोहू है, जो पांच दफे बदल गए ना मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान, तो मति श्रुत अवधि मन परे और केवल ये मैं नहीं हूँ, ये भेद को प्राप्त हुए हैं और ज्ञान 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 ये मैं, क्योंकि इन पांच में जाकर के भी उसने ज्ञानत्व को नहीं छोड़ा है। देखो पहले अपन कलश काट करते हैं, एकत्वे नियतस्य शुद्ध नयतो व्याप्तुर यदस्यात्मना पूर्ण ज्ञान घनस्य, पूर्ण ज्ञान का घन पिंड ऐसा परिपूर्ण आत्मा जो परद्रव्यों से पूर्णता पृथक है और अपने में पूरी तरह व्याप्त है, मैंने अपने गुण पर्यायों में व्याप्त है, वो कहते हैं ऐसा जो आत्मा है नियत, वही वास्तव में उसके दर्शन ही सम्यक दर्शन है, बोलेगा दर्शन में सम्यक दर्शन नहीं है, कुल भगवान आत्मा के दर्शन ही सम्यक दर्शन है ना, और उसे छोड़कर इन नौ तत्व की संतति वाला सम्यक दर्शन किसे नहीं चाहिए है? इन्ना शब्द है, इसके लिए मैं आपसे ध्यान दिला रहा हूँ, इन्ना माने क्या होता है, नहीं चाहिए, ना माने होता है अस्मक, मुझे नहीं हमें, अंतर समझ में आया, मुझे और हमें में मे नो ना, तो एक वचन में तो मे है और बहुवचन में ना है, ये जो अस्मत शब्द है ना अहम आवाम वयम, तो इसके ही वो रूप है द्वितीया चतुर्थी और षष्ठी, इसमें वैकल्पिक रूप मे नो ना भी होते हैं, ऐसे ही तो अस्मत शब्द में भी होते हैं है ना, तो ये जो ना है, ना माने हम सबको, माने ये एक की बात नहीं है, आचार्य ये नहीं कह रहे कि मुझे नहीं चाहिए, जिसको भी सम्मा दर्शन चाहिए हो क्या है ना, उसको नौ तत्व की संतति वाला, संतति वाला माने सम्मा दर्शन छोटी दो है, एक बहुत बड़ा धर्म है सब में, हमने हर चीज के दो दो टुकड़े कर दिए हैं और एक को हमने महा हे और एक को महा उपादेय मान लिया है, वास्तव में वस्तु तो एक ही है और उसको दो रूप में कहा जाता है, दो रूप में देखा जाता है, जैसे श्रुत केवली शब्द को उदाहरण के तौर पर देता हूँ, तो श्रुत केवली तो एक ही है, अब उन्होंने अपने आत्मा को जाना इसके कारण उन्हें निश्चय श्रुत केवली कहते हैं और द्वादशांग को जाना उन्हीं को इसके कारण व्यवहार श्रुत केवली कहते हैं, ये उदाहरण मैंने क्यों दिया, इसलिए दिया जो पिछली गाथाओं में निकल भी गया है, और दूसरे इसलिए कि कोई आदमी द्वादशांग का पाठी नहीं हो और अपने को श्रुत केवली घोषित कर दे तो नहीं चलेगा, और उसका प्रूफ है कि अपने आप केवली सबसे अंत में कौन हुए, जम्बू स्वामी है ना, और श्रुत केवली कौन हुए, भद्रबाहु, तो भद्रबाहु के बाद तो कोई श्रुत केवली हुआ नहीं, तो यदि आत्मा के जानने के कारण श्रुत केवली होते तो जो सम्मा दृष्टि तो बिना आत्मा के जाने होते नहीं है, तो जो जो सम्मा दृष्टि हुए वो सब श्रुत केवली होने चाहिए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसके बाद आज तक कोई सम्मा दृष्टि नहीं हुआ, यानी श्रुत केवली होने के लिए दोनों शर्तें जरूरी हैं, कि द्वादशांग का पाठी होना और आत्मा का अनुभव होना, ये मैंने सब लिखा है अपने समय सारण सीजन में, आपने पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से लिखा है, और अब उसको आत्मा के जानने के कारण निश्चय श्रुत केवली कहते हैं और सारे लोकालोक को जानने के कारण व्यवहार श्रुत केवली के, द्वादशांग का पाठी होने के कारण व्यवहार श्रुत केवली कहते हैं, अब लगाओ ये अपना कलश, कि मुझे वो द्वादश अंग का पाठी रूप सुख केवली पना नहीं चाहिए, मुझे तो एक आत्मा के अनुभव रूप सुख केवली पना चाहिए। यानी मेरी महिमा, मैं द्वादश अंग का पाठी हूं इसलिए नहीं मानता, मुझे आत्मा का अनुभव है इसलिए मेरी महिमा मुझे है। मैं ही उस भद्रबाबू सुखकेवली को द्वादश अंग के पाठी से मानता हूं, लेकिन उनकी महानता उनके आत्मा के अनुभव में है। कहने का मतलब यह है द्वादश अंग के पाठी पने में नहीं है। लेकिन ये इस जगत जो है वो द्वादश अंग के पाठी पने को मानता है। जगत माने ज्ञानियों का जगत भी, जरा सुनना मेरी बात। क्यों? क्योंकि उसका काम तो उससे होता है, उसके निश्चय सुख केवली पने से उसे कुछ नहीं मिलता, उसके व्यवहार सुख केवली पने से कुंड के समय सार मिलता है। जिस न्याय से अपने यहां अनंत भगवान को पहले नमस्कार किया गया है ना, नमो अनंतारम में, क्योंकि उनका हमसे उपकार होता है, तो हम तो उपकार वाले को पहले याद करते हैं। तो ये तो व्यवहार की बात हो गई ना, हमने उपयोगिता के आधार पर निर्णय किया, उनकी महानता के आधार पर, अनंत से सिद्ध महान है कि अनंत महान है इसके आधार पर हमने निर्णय नहीं किया, हमने अपनी उपयोगिता के आधार पर निर्णय किया। और व्यवहारिक जन ऐसा करते ही है। क्यों? गंगा जी का पानी कितना ही मीठा होगा, हमारा तो हमारे बगल में जो कुआ है वही काम आने वाला है, हमारे लिए तो वही सबसे बड़ा नेता है। गांव के किसान को तो अटल बिहारी वाजपेयी बड़े नेता नहीं है, वो गांव का छठवैया नेता जो है ना, जो उसके काम करा देता है, उसके लिए तो कोई बड़ा नेता है। वो तो वो कहेगा जिसको वोट दे देगा, क्यों इस पर निर्णय करेगा वो, उसके उसके आधार पर निर्णय नहीं करेगा। तो ये व्यापारी जनों का निर्णय है। इसलिए कहते हैं कि वो नहीं चाहिए का मतलब ये है कि तुमने अपने स्वार्थ की वजह से उसको जो महत्व दिया है तुम इसको महत्व दो, इसकी बात है। तो भेद की श्रद्धा वाला सम्मत से नहीं चाहिए। फिर मैं आपको कहना चाहता हूं, जो तुमने सुख केवली पे घटित किया वो सम्मत दृष्टि पे घटित करो। निश्चय सुख केवली, निश्चय सम्मत दृष्टि और व्यवहार सम्मत दृष्टि, इस प्रकरण की बात करता हूं मैं। तो अपने आत्मा का अनुभव है, उसमें एकत्व है, ममत्व है, उसका नाम निश्चय सम्मत दर्शन, और सात तत्व की श्रद्धा उसका नाम व्यवहार सम्मत दर्शन। लिखा गया नहीं लिखा? अभी आप देखना राम जी भाई का तत्वाशुद्ध पढ़ना, और उसमें बहुत मेहनत करके तत्वा सिद्धानम सम्मत दर्शनम को निश्चय सम्मत दर्शन सिद्ध किया है। आपको बहुत कंफ्यूजन खड़े हो जा सकते हैं, इसलिए मैं बताऊंगा आपको। वो निश्चय सम्मत दर्शन है। क्यों? वो निश्चय का मतलब ये है कि वो कहते हैं व्यवहार सम्मत दर्शन तो राग है, गुरुदेव की प्रवचन में आपने भी सुना होगा, व्यवहार सम्मत दर्शन तो राग है, और राग उपाधि कैसे हो सकता है, तो व्यवहार सम्मत दर्शन उपाधि कैसे हो सकता है? वो तो व्यवहार सम्मत दर्शन तत्व संबंधी विकल्प राग है। तत्वार्थ की श्रद्धा जो है वो राग नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि श्रद्धा का एक तो मतलब होता है अपनापन स्थापित करना। तो त्रिकाली जो भगवान आत्मा में तो उसने अपनापन स्थापित किया, लेकिन ये मैं नहीं हूं, और ये मैं नहीं हूं लेकिन ये है, ये तो जाना कि नहीं जाना। इसलिए जो व्यवहार सम्मर्शन होता है वो ज्ञान की मुख्यता से हो जाता है। श्रद्धा तो बिल्कुल निर्विकल्प होती है, इसे निश्चय सम्मत होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए एक बात और बता दूं मैं आपको, बहुत मार्मिक है। हम आत्मानुभूति को ही सम्मत दर्शन मान के बैठ जाते हैं, जबकि सम्मत दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है और आत्मानुभूति अनंत गुणों की पर्याय है, जिसमें ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण, वीर गुण, ये सब शामिल है, चारित्र गुण, सर्वगुणाएं संकेत जिसे बोलते हैं ना, आत्म सर्वमुख हुए, तो यदि दोनों को एक मान लें तो दिक्कत क्या हो जाएगी कि आत्मानुभूति के काल में तो उसे हम सम्यक दृष्टि मानेंगे, और जब आत्मानुभूति का काल नहीं है तो उसमें तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। भरत चक्रवर्ती लड़ाई लड़ते वक्त सम्यक दृष्टि था कि मिथ्या दृष्टि, तो लड़ाई लड़ते वक्त आत्मानुभूति तो नहीं थी, शुद्धोपयोग तो नहीं था। अरे शुभोपयोग भी कहा था, अशुभोपयोग था। ये 7000 साधना करने के लिए माथे पर वो निकलना तो शुद्धोपयोग का काम है कि अशुभोपयोग का काम है? और 7000 वर्ष के लिए लड़ने के लिए निकलना ये शुभोपयोग हुआ कि अशुभोपयोग हुआ? इन सब मैंने सीखा कि नहीं। आत्मानुभूति तो चौथे गुण स्थान में क्षणिक है, छह महीना में एक आध बार क्षणिक होती है, और संबंध निरंतर कायम रहता है। अब दोनों को हम एक मान लेंगे तो या तो मिथ्या दृष्टि हो गया, आत्मभूति से बाहर आते ही ऐसा मान लेंगे हैं? और या फिर वो संबंध मान लेंगे हम 24 घंटा आत्मानुभूति है, ऐसा नहीं है। ऐसे मानने वाले लोग भी हैं वीरेन जी, ऐसा शास्त्र में भी है, घबराना नहीं। जैसे आपको व्यापार का कितने साल का अनुभव है, बोलो वीरेन जी? 50 साल का आपके व्यापार का अनुभव है। रोटी खाते वक्त वो अनुभव है कि नहीं है? जगत में माना जाता है कि नहीं माना जाता, बोलिए? वो अनुभव है ना, उसको भी अनुभूति कहते हैं, उसको भी अनुभव कहते हैं। अनुभव अनुभूति में भी ऐसा फर्क किया जाता है कि मुझको वो मैं अनुभूति से बाहर आ गया, ध्यान से सुनना, शुद्धोपयोग नहीं है समझ लो, लेकिन ऐसी सिद्धा और ज्ञान में ये बात कायम है ना कि ये मैं हूं, उसमें अपना अपन कायम है, सिद्धा गुण में और ज्ञान गुण में भी। एक क्षण को भी ज्ञान गुण में से भी वो बात बाहर नहीं होती है। ज्ञान गुण इसलिए तो कहते हैं सुपर प्रकाशक है, फिर पर को जानेगा तो अपने को जानना छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि वो हमारे दिमाग में नमारू कहां से घुस गया है तो एक सूक्ष्म ज्ञान एक समय में एक को ही जान सकता है, स्व को जानेगा तो पर को नहीं जान सकता, पर को जानेगा तो स्व को नहीं जान सकता। इसने बहुत बड़ी भ्रांति पैदा की। इसका अर्थ भी बताऊंगा मैं, जहां लिखा है उसका क्या अर्थ। ये आत्मा का स्वभाव सुपर प्रकाशक है, जब पर को जानेगा तब स्व जानने में आता रहता है, जब स्व को जानता है तब पर जानने में आता रहता है। ज्ञान की प्रगत पर्याय उसी का नाम है कि उसमें जो जो जानने की योग्यता वो जानता रहे। मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप संस्कृत बोलते हैं तब आपको अंग्रेजी का ज्ञान कहीं गायब हो जाता है? जब अंग्रेजी बोलते हैं तो संस्कृत हिंदी का ज्ञान गायब हो जाता है? तो ज्ञान प्रगत पर्याय में है, शक्ति रूप है। शक्ति रूप में तो भैया तुम्हें केवल ज्ञान है, वो ज्ञान प्रगट पर्याय में है और वो कायम रहता है। तो ऐसे ही जब पर को जानता है तब आत्मा उसके ज्ञान का सम्मा दर्शन जिसे हो गया है और सम्मा दर्शन कायम है तो 24 घंटा आत्मा ज्ञान का घी बनता रहता है उसकी। और उसमें अकेला आत्मा ज्ञान का घी नहीं बनता, मैंने जानने में मेरी इतनी बात नहीं है, साथ में ये भी ज्ञान का गेय बना रहता है कि ये मैं। तो सिद्धा क्या करेगा इसको अलग क्या रखा घबराते हो तुम? ज्ञान में जानने में अकेला इतना ही नहीं कि ये है और ये मैं हूं, ऐसा निरंतर ज्ञान उसके ज्ञान में बना रहता है। पर उसका तो प्रभाव है ना, देखिए चौथे गुण स्थान वाला एक सम्यक दृष्टि है, और छठवें गुण स्थान वाले एक मुनिराज है, तीन कसाई के अभाव वाले एक मुनिराज है। ज्यादा निर्जरा किसके होती है? जो आहार को गए हैं, कभी शिष्यों को डांट रहे हैं, क्यों तुमने ऐसी गलती क्यों की, जाओ सुख सागर वहीं खड़े हो जाओ, तुम्हारे दिए संग क्यों मरे है? मेरे कहने का अर्थ ये है कि उस काल में भी ज्यादा निद्रा हो रही, क्यों हो रही है? इससे सिद्ध होता है कि उपयोग से निद्रा नहीं होती, घबराना नहीं, परिणति से निद्रा होती है। तीन कसाई के अभाव रूप निर्मल परिणति उसके है। उपयोग भले ही अशुभ भी हो कदाचित शुभ हो तो भी उसकी नजरा अधिक है और इसका बिल्कुल आत्मा का अनुभव कर रहा शुद्ध उपयोग है तो भी नजरा कम है। तो उपयोग के हिसाब से नजरा का कहां नियम है? नजरा का नियम तो परिणति के हिसाब से है और उसकी परिणति स्थायित्व की दृष्टि से उसे परिणति कहते हैं और ज्ञान गुण की दृष्टि से उसे लब्धि कहते हैं। बस इतना फर्क है। क्या ज्ञान गुण की दृष्टि से उसे लब्धि और उपयोग कहते हैं और चारित्र की दृष्टि से परिणति और उपयोग कहते हैं। श्रद्धा गुण में तो ऐसा भेद है नहीं, क्या अंदर कुछ बाहर कुछ, वो तो एक ही है बस खत्म। तो संबंध असम काय का नाम है बोलो? आत्मानुभूति का नाम संबंध असम नहीं है क्योंकि आत्मानुभूति के बिना भी संबंध असम टिकता है। तो फिर क्यों कहा शास्त्रों में? क्योंकि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति आत्मानुभूति के काल में होती है, इसलिए कहा। जब सम्मर्शन पहली दफे उत्पन्न होगा दूसरी दफे भी उत्पन्न होगा छूट जाए और दूसरी तो वो अनुभूति के काल में होगा। फिर ऐसा नहीं है कि छूट गया और फिर खेलते खेलते हो जाए, लड़ते लड़ते हो जाए, द्वारा ऐसा नहीं होगा, न पहली दफे ऐसा होगा। तो उत्पत्ति उसके अनुभूति के काल में होती है, इसलिए अनुभूति के साथ सम्मर्शन को जुड़ दिया। इसके लिए सरल उदाहरण नहीं है क्योंकि मैं प्रश्न करता हूँ, अभी आपने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए और सबने उत्तर भी दिए, तो मेरे प्रश्न का उत्तर देने की जरूरत नहीं है, मन में ही उत्तर दे लेना है? क्या कि ब्रह्मचारी के बाल बच्चे होते हैं कि नहीं? समझे? सोच लेना अपने मन में, फिर अभी बताऊंगा तो उससे मिलान कर लेना अपने उत्तर का, और गलती है कि सही है कि आप जान जाएंगे और आपकी इज्जत भी बची रहेगी, मेरी भी बची रहेगी। क्यों है? ब्रह्मचारी के बाल बच्चे होते हैं कि नहीं? यदि आप ये कहें कि होते हैं तो हमें ये कहेंगे क्या बात करते हैं, गजब हो गया, ब्रह्मचारियों के भी बाल बच्चे होने लगे। और आप ये कहें कि नहीं होते हैं तो हम कहेंगे हमने तो देखे। नाम बता दें आपको। ये बात मैंने 45 साल पहले सबसे पहले कही थी और वो ब्रह्मचारी छोटे लाल जी थे, आप जानते, नाम सुना नहीं होगा आपने तो, डॉक्टर हरिभूषण के पिताजी। डॉक्टर हरिभूषण का नाम सुना क्या? नहीं, अब तो उनका भी स्वर्गवास हो गया। उज्जैन विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर थे, हम मेरे गुरुजी के वो सहपाठी थे डॉक्टर देवेंद्र कुमार के। उनके पिताजी का नाम था ब्रह्मचारी झूठेलाल जी। वो हमारे पास आते थे, हम 7 साल बहुत चर्चा करते थे। वो तो मतलब मेरे दादाजी की उम्र के थे, पर हम तो मैंने ऐसी सभा में बैठे थे, वो बात अशोक नगर आया करते थे, वे सब इंदौर आश्रम के ब्रह्मचारी मेरा प्रवचन सुनने के लिए, परशुराम जी, कुंजी लाल जी, छोटेलाल जी, चांदमल जी, तो वहां सब पा करते थे वहां। तो मैंने पूछा कि आप ब्रह्मचारी हैं कि नहीं और आपके बाल बच्चे हैं कि नहीं है? नहीं, इसका अर्थ क्या हो गया कि ब्रह्मचारी के बाल बच्चे होते नहीं है पर होते हैं? सोच सकते मत बोलो, मतलब पहले ब्रह्मचारी नहीं हो मतलब बाल बच्चे हो गए और बाद में उसने ब्रह्मचारी बच्चे ले लिया, तो बाप के नाम की जगह तो उसी का नाम लिखा जाएगा ना। और उनसे पूछे जाके भी तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो वे कहेंगे ब्रह्मचारी छोटे लाल जी। अरे भाई, सिर्फ उसके उत्पत्ति काल, उत्पत्ति काल माने गर्भाधान, गर्भाधान काल में ब्रह्मचर्य नहीं होना चाहिए, बस खत्म, इतनी सी बात है। भगवान महावीर का 2500 मंदिरमान प्रस्ताव स्वर्ण संकलन हुआ था भगवान महावीर का, तो उसके बाद एक देवलाली में संकलन हुआ। एक व्यक्ति थे वो चाहते थे माँ बाप बनना, और पहले भी बन चुके थे, समझ रहे? तो उसे बहुत विवाद चल रहा था, चल रहे ना कि भाई ये बनाएंगे नहीं बनाएंगे, दूसरे को चांस देंगे उनको चांस देंगे, ये करें। तो सभी दीदी भाई वगैरह सब आए कि क्या क्या करना क्या करना, एक बहुत प्रेशर है। एक बात क्या है कि इस अब वो पहले बन चुके हैं, और मैंने कहा मेरे से मिला उन्हें, मेरे से मिलाओ कि जिस भगवान के माँ बाप बनेंगे तो जिसने भ्रमतेज नहीं लिया था क्या उन्हें? ये तो नियम है, भ्रमतेज ले लेते हैं कौन? माता पिता। तो उन्होंने भ्रमतेज ले लिया था, अभी द्वारा माँ बाप कैसे बताओ? एक मिनट में हाल हो गया भवन जी, मैं नाम छोड़ के भाग गए। मैंने बताओ तुम ब्रह्मचारी हो कि नहीं, और ब्रह्मचारी हो तो फिर माँ बाप कैसे बन सकते हो? भगवान नहीं कहते, भगवान के बन सकते हैं। ये तुम्हारा प्रोफेसर देखो भैया कैसे बना दिया तुमने इसको प्रोफेसर। तो अर्थ समझ कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के काल में आत्मानुभूति अनिवार्य है, लेकिन आत्मानुभूति की अनिवार्यता उसकी स्थिति काल में नहीं है। फिर वो रहे खल में है ना 6 महीने तक, तो कोई बाधा नहीं, 6 महीने बाद फिर एक दफे जरूर होना चाहिए वो आत्मानुभूति, नहीं तो चला जाएगा सम्मा दर्शन। तो आत्मानुभूति और सम्मा दर्शन में ये फर्क है। तो वो नौ तत्व की श्रद्धा वाला, तो नौ तुम तो कहते नौ तत्व की श्रद्धा वाला सम्मा दर्शन हमें नहीं चाहिए, वो तो सारी दुनिया वाला सम्मा दर्शन भी है। ये तो उत्पत्ति के काल में नौ तत्व का भी विकल्प नहीं होना चाहिए। बुरे बुरे बोलते हैं कि सब व्यवहार समर्थन तो राज है, यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ तो तत्वार्थ सिद्धांत को व्यवहार सम्मा दर्शन कह रहे। नौ तत्व के भेद पड़ा बस इतना, इसका नाम व्यवहार हो गया। ऐसा नहीं है कि वो व्यवहार सम्बन्ध से नौ तत्व को मैं हूं ऐसा मानता है, नौ तत्व में अपनापन होता है, वो तो जानता है नौ तत्व में एक जीव तत्व भी है ना, और ये जीव तत्व मैं हूं, ये बाकी के तत्व मैं नहीं हूं। और यहाँ से और आगे की बात लिखी है, नव तत्व गतत्वम न मंचती, कि नौ तत्व में जाकर के भी जो अपनापन नहीं छोड़ा। देखो अभी नौ तत्व के नाम देखे हमें, जीव अजीव आश्रय बंध संबंध जरा पुण्य पाप हो गए ना नौ तत्व, तो ये नौ तत्व में जीव तत्व कैसे गया? नव तत्व गतत्व भी लिखा ना, इसका अर्थ कर रहा हूं मैं। तो 13वीं गाथा भी आ रही ना, इसमें आएगा संवार, ये संवारक आश्रव आश्रवक आएगा ना, एक एक तत्व के दो दो टुकड़े करो, एक संबर एक द्रव संबर एक भाव संबर, तो एक संवार एक संवारक, द्रव संबर संवारक और भाव संबर संवार, द्रव आश्रव आश्रवक और भाव आश्रव आश्रव आश्रव्य आएगा। अभी 13वीं गाथा अपने ही चलाएंगे, कल तक मेरा ना आएगा, जहां तक कोशिश करूंगा कल में आए ना। तो उसमें उनमें दो दो टुकड़े कर रही है, जो नौ तत्व हैं, अब इनको एक तत्व में विलय करना है, नौ तत्व का एक बनाना है, तो नौ तत्व को तोड़ना पड़ेंगे दो दो टुकड़े कर। एक द्रव्य आश्रव एक भाव आश्रव, एक द्रव्य पुण्य एक भाव पुण्य, एक द्रव्य पाप एक भाव पाप, एक द्रव्य संभर भाव संभर, द्रव्य नजरा भाव नजरा, द्रव्य मोक्ष भाव मोक्ष। तो ये दो दो टुकड़े हो गए, अपन तो नौ की तुम तो 18 हो गए, तुम तो कम करने थे। तो ये कहते हैं कि नौ के जो 18 हो गए, तो इसमें भाव भाव वाले ये सब जीव की पर्याय हैं, और द्रव्य द्रव्य वाले ये सब पुद्गल की पर्याय हैं, इसलिए उसे पुद्गल में समेट लो, शामिल कर लो, इसे जीव में शामिल कर लो, साथ के दो रह गए, जीव जीव रह गए। सात तत्व से समेट के नौ तत्व से समेट के दो दो रह गए ना, जीव में जीव में आया था ना, जीव जीव दो तत्व। जब दो की बात करेंगे तो फिर सात बाकी कहाँ जाएंगे, तो इन्हीं में समेट के आएंगे ना। अब दो रह गए तो वो कहते हैं कि इनमें जीव मैं हूं और मैं और जो है वो मैं नहीं हूं, उसका नाम है अजीव है। अजीव माने जीव नहीं है, जीव नहीं है, मैं जीव हूं तो मैं नहीं हूं, तो जो मैं हूं वो जीव और जो मैं नहीं हूं वो अजीव। तो एक ही चीज असली नास्ती से दो हो गई, तो दो हो गई तो एक ही रह गई ना। तो वो ये कहते कि नौ संतति वाले को ऐसा एक हमने जीव में समेट लिया। अब आपको एक दिखने एक दिक्कत खड़ी हो जाएगी कि सारे पर्याय तत्व जीव तत्व में शामिल हो गए क्यों, अभी वो तो पर्यायों से तो भिन्न भगवान आत्मा है, अभी अपना बहुत प्रॉब्लम है। अभी तो बहुत अध्ययन हो गया है, बहुत अपन रिसर्च हो गई है, बहस हो गई है, निर्णय पर पहुंच गए। जब हम शुरू शुरू में आए थे हमने कितना भोगा है इसमें। अरे भाई हम क्या करें, इसमें लगाना है नव तत्व के तत्व भी, कि वो नौ तत्व में गया है जीव। लिखा के नहीं क्लियर शब्दों में मेरी तरफ से कह रहा हूं ना, तो नौ तत्व पर्याय तत्व है ना, तो पर्यायों में गया है। तो कहते हैं कि फिर भी सदैकत्व न मंचती, फिर उसने एक पना छोड़ा नहीं है, जो जो एक पना नहीं छोड़ा बस वो मैं हूं। तो वो जो उसको वो हमें दृष्टि में कौन करना पड़ता है, एक दो बातें हैं, एक होता है सद्गुण व्यवहार में, एक होता है असद्गुण व्यवहार में। असद्भुत व्यवहार न तो बिल्कुल पृथक है, माने संयोग का ज्ञान कराता है, माने पर स्त्री पुत्र मकान जायदाद जो बिल्कुल अपने से जुड़े हैं, और सद्भुत व्यवहार न होता है वो स्वयं में ही भेद करता है, अभेद में भेद करता है, ख्याल रहे ना। तो अभेद में भेद करेंगे तो सारे भेद को अभेद में समाना पड़ेगा ना, वो बाहर कैसे फेंक दोगे उसे, जैसे संयोगों को बाहर फेंक दिया तुमने, ऐसे भेद को बाहर कैसे फेंक दोगे। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, तारे सफेद बार अनंत गुणों को, तो गुण का भेद नहीं रहे देने देंगे, अनंत गुण तो रहेंगे कि नहीं, अनंत गुण का अखंड पिंड तो रहेगा ना है? तो कुछ को वहां फेंक दो, कुछ को है रख समाहित कर लो, खत्म कर दो मामला। मैं अमेरिका में मानू क्या उदाहरण देता हूं, अमेरिका में क्या है खास बात कि यहाँ पर यदि घर में एक फैमिली रहती है, एक फैमिली में बहुत मुश्किल से मियाँ बीवी और एक दो बच्चे, और एक बच्चा तीन वर्ष का एक एक वर्ष का, लेकिन उनके लिए वहाँ कम से कम तीन बेडरूम का मकान चाहिए, और चार का तो हो तो बहुत ही बढ़िया है। क्यों, एक मेहमान को आप तब ठहरा सकते हैं जब आपके पास एक एक्स्ट्रा बेडरूम हो, माने आपके पास मेहमानों के लिए अलग बेडरूम हो तो ही आप मेहमानों को घर में ठहरा सकते हैं। अब वो अपने हिंदुस्तानी एक ही कमरे में सब घुस जाते हैं तो हिंदुस्तानी तो वहां भी ऐसा कर लेते हैं, लेकिन वो कानूनन बात यह है कि आपके घर में मेहमानों का रूम है तो मेहमान को ठहरा सकते हैं, पेरेंट्स का रूम है तो पेरेंट्स को ठहरा सकते हैं साथ में, और वहां एक और होता है पत्नी के माँ बाप का एक रूम अलग होता है। तो भाई आपने देखा, मैंने देखा है, पत्नी के मैंने उसको एक पत्नी के माँ बाप अलग नाम है, मैं नाम भूल गया, शिकागो में है एक भाई के यहाँ, तो ये बोलते पत्नी के माँ बाप। उसमें क्या होता है, छोटा सा फ्लैट ही होता है, उसमें रसोई मसोई सब होती है, और अपने पेरेंट्स के बारे में रसोई मसोई भी होती है। तो उनके क्या है कि वो एक तीन वर्ष के बच्चे का अलग बेडरूम, एक वर्ष के बच्चे का अलग बेडरूम, समझे, अमिया बीवी का अलग बेडरूम।
बेडरूम बनने के बाद
तो यार मकान बदलना पड़ेगा, वहां तो मकान यदि बीवी बदलते हैं मकान बदल लेते हैं। तो मैं उनसे एक बात कहता हूं, क्यों इस सात तत्व की बात को, नौ तत्व की बात को समझाने के लिए, कि यदि तुम्हारे बच्चे के लिए सेपरेट बेडरूम हो तो बच्चा आपके कमरे में नहीं आएगा. लेकिन यदि उसे सेपरेट बेडरूम है ही नहीं तो कहां जाएगा? फिर तो वो आपके कमरे में आएगा ही ना. तो तुम पर्यायों के लिए अलग तत्व रखो तो पर्याय अपने बेडरूम में रह जाएंगी. लेकिन उसके लिए तुम तत्व नामे ही नहीं रखो तो फिर वे कहां जाएंगी? जिसकी पर्याय होगी उसी दिन में समाएंगी. समझ रहा है कि नहीं? एक मेरे मित्र थे धीरेन्द्र जैन, अभी तो वो इंडिया ही में आ गए हैं, बिहार के थे, बहुत अच्छे आध्यात्मिक दृष्टि वाले. तीन बच्चियां थी उनकी, छोटी छोटी, एक एक वर्ष की, एक तीन वर्ष की, एक पांच वर्ष की. तो मैं ऐसे घर में घूम रहा था, मेरी आदत घूमने की है, मैं घूमता रहता हूँ घर के अंदर ही अंदर. तो एक बच्चे के कमरे में बहुत खिलौने मिलौने सजे रहते हैं, तो ऐसे में एक बच्चे के कमरे को किवाड़ खोल के चला गया बच्चे के कमरे में. तो वो लड़की एकदम करके अपनी मम्मी के पास दौड़ी, क्योंकि वो तो मैं हिंदी नहीं समझती थी, मैं अंग्रेजी नहीं समझता हूँ, तो मेरे से वो बात क्या करती. अपनी मम्मी के पास गई तो बहुत गुस्सा होकर के बात कर रही थी, मम्मी समझा रही थी. क्या मैंने पूछा, क्या क्या बात क्या है? तो वो कह रही थी कि ये मेरे कमरे में बिना नोक किए क्यों आए, ऐसा नोक करना चाहिए. पांच वर्ष की बच्ची, समझे ना, मैं 72 वर्ष का बुड्ढा उसके कमरे में गया तो वो कहती मेरे कमरे में क्यों आए? तो मैंने कहा इसमें क्या हो गया कि बच्ची से मैं पूछू कि मैं आज जमीन साहब क्या कहते हैं, मैं बोलू तब जाए क्यों? कि इन बच्चों का ये कहना है कि इसमें हमारी प्राइवेसी भंग हुई. आप समझे, दादा के जाने पोते के कमरे में दादा जाए तो पोते की प्राइवेसी भंग होती है. वो 5 वर्ष के पोते की, 25 वर्ष वाले नहीं होते तो. लेकिन इतना वे कब कर सकते हैं? जब उनके लिए सेपरेट बेडरूम रखे तब. यदि एक ही बेडरूम होगा तो सब घुसेंगे, माँ बाप के में बच्चे घुसेंगे, बच्चों के माँ बाप घुसेंगे. क्यों? फिर तो सभी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जब तुमने एक ही तत्व रखा तो ये 9 तत्व जाएंगे कहां से? वो दुनिया में से गायब थोड़ी कर दोगे तुम. अगर भेद का ही निषेध करोगे ना, इसलिए जीव की पर्याय जीव में गई और अजीव की पर्याय अजीव में. नव तत्व के तत्वी अदी के तुम न मुंचती, कि वो पर्याय गई कि गई क्या? कि गई वो तो उसी में समा होते रहेंगे. मैं पूछता हूँ भूतकाल की पर्याय कहाँ गई? बोलो, उसकी तो भी आई नहीं है और भूतकाल की तो आ गई थी ना, फिर कहाँ गई बीरेन जी? चली गई ना, खत्म हो गई. खत्म हो गई तो द्रव्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा द्रव्य अनादि अनंत है ना, और इतना खत्म हो गया तो अब तो इतना रह गया बराधा. तो द्रव्य में ही विलीन हो गई कि पर्याय तुमने द्रव्य में घुसा दी. हम तो बहुत दिनों से कह रहे थे कि पंडित रघुमचंद पर्यायों के द्रव्य में घुसाने वाला है. अरे भाई, वे पारिणामिक भाव के रूप में जाके द्रव्य में समाती हैं, और पारिणामिक भाव तो दृष्टि का विषय है कि नहीं है? ये यार शास्त्र में आता है, सब गुरुदेव की वाणी में भी सुन लेना कि वे अंदर में विलीन हो गई, लेकिन वो छायुष्मक भाव के रूप में नहीं है, छायक भाव के रूप में नहीं है, औष्मक भाव के रूप में नहीं है, वो पारिणामिक भाव के रूप में समाहित हो गई. तब तो द्रव्य अनादि रहेगा ना, इन्हें द्रव्य खत्म हो जाएगा. यदि वो बिल्कुल ही खत्म हो गई होती, सुनो, तो फिर जानी नहीं जा सकती थी. आज जिसे केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान तो उसे आज हुआ है ना, तो अनंत काल पहले की खुद की पर्याय वो जान सकता कि नहीं जान सकता? तो जानी जा सकती है, इसका मतलब वो है. तो लाओ, लाए कैसे? स्वकाल में है, वो काल लाओ तो वो पर्याय आ जाएंगे. हाँ, तो क्या तो ऐसी अभी पारिणामिक रूप हो गई, उस वक्त ऐसी थी, ऐसी दोनों जान जा सकती है. ऐसी दोनों जानी जा सकती हैं. इसलिए तो यही तो बड़ी विचित्रता है, अन्यथा वो ज्ञान के गेय नहीं बन सकती थी. एक ज्ञान के गेय में है ना, उसमें लिखा ना प्रथम सार में, एक बिल्कुल मूल गाथा है कि अनुत्पन्न और विनष्ट पर्याय ज्ञान में वर्तमान बत ही झलकती हैं. वर्तमान बत विद्यमान है, सब ऐसा है ना.
वर्तमान जो पर्याय है जो पर्याय उत्पन्न होकर विकसित हैं, वे सर्व नहीं विकसित, वे सर्व नहीं विद्यमान पर प्रत्यक्ष हैं तो ज्ञान
है ना। तो मैंने उसे पता अनुवाद किया है। हाँ बोलो बोलो।
पर्याय जो
पर्याय जो अनुत्पन्न है नष्ट जो हो गई है वे सभी पर तुम तो नया शब्द बना रही हो, मैं तो अपना बना बनाया बोल रहा हूँ। विद्यमान वर्तमान वर्तमान है ना। तो इसलिए कहते हैं कि तद एक नव तत्व के तत्व भी नौ तत्वों में जाकर के भी सातवें कलश की नीति पंक्ति तद एक तत्वों ने मंच दी। देखो अपने दोनों शब्दों का हिंदी कैसे पढ़ते हैं है ना। पढ़ो भी पढ़ो, मेरा तो गला नहीं गली गले है। नियत है जो स्वयं के एकत्व में नए शुद्ध से शुद्ध नए से जो अपने एकत्व में सुनिश्चित है ना। शुद्ध नए की दृष्टि से देखो तो वो कभी भेद रूप हुआ ही नहीं, समझे ना। नौ रूप स्वयं है ना, वह ज्ञान का घन पिंड पूर्ण पृथक है परद्रव्य से, वो परद्रव्य से पृथक है। मैं एक बात और ध्यान दिलाना चाहता हूँ आपको, इस समय सार में तीन तरह की चीजें आपको मिलेंगी। एक तो यही परद्रव्य से पृथकता की बात, इसको बहुत बहुत आता है कि पूरा प्रश्न सार में भी असमान जाति द्रव्य पर्याय से भिन्न, असमान जाति द्रव्य पर्याय से भिन्न है ना, मनुष्य पर्याय से भिन्न, परद्रव्य से पृथकता की बात है क्या नहीं। देहम वा दमणम वा ये सारा प्रकरण यहाँ मिलेगा जी। दूसरा समय सार में मिलेगा गुरुदेव के प्रवचनों में, समय सार के जितने प्रवचन है ना यदि उन्हें आप सुनो तो 1100 से कम बार यदि वो वाक्य मिल जाए ख्याल में है ना, जितने कम बार मिलेगा उतने रुपया उन्हें आपको दूंगा ढूंढ के लाना। 1000 से ज्यादा बार मिलेगा, क्या वाक्य है वो आई निर्मल पर्याय में शामिल करीने बात है, शक्तियों के प्रकरण में मिलेगा और भी जगह मिलेगा, क्योंकि शक्तियां तो समय सार में से निकाली है ना, जीवक शक्ति दूसरी गाथा में से निकाली है आते ना है? तो वो उसमें भी वही मिलेगी, जब शक्तियों के प्रकरण में मिलेगी तो वो बात जहाँ शक्ति जहाँ से निकाली है शक्ति वहां भी मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। आई निर्मल पर्याय में शामिल करीने बात है ना। दूसरा वाक्य मिलेगा कि वरुणादि अरुराग आदि तेने जो भाव को न्यारा किया। अब देखिए वर्ण केवल ज्ञान आदि कहा लिखा, अब मान लो कौन दूसरे उसमें शामिल होगा जो भी करोगा 29 प्रकार के भाव हैं, लेकिन डंके की चोट घोषणा जिसे अपन कहते हैं वो तो यही है ना, एक रागादि एक वर्णादि एक रागादि, तो रागादि वर्णादि में सारे संयोग और रागादि में सारे संयोगी भाव है। निर्मल पर्याय को वहां भी छोड़ दिया है? वो कहते हैं कि जिस दृष्टि के विषय को हमको मैं आश्रय संबंध से प्रकट करना भी नीचे पढ़ता हूं उसमें लिखा है, इसमें वो भी निर्मल पर्याय है का जिससे तुझे भिन्नता की समस्या हो। अभी जो पर्याय है जो संयोग विद्वान हैं उनसे भिन्न की तो बात नहीं करता और जो भिन्न समझता नहीं है, जो नहीं है जो होगी उनसे भिन्नता की बात करता है। केवल ज्ञान से भिन्न है आत्मा, लेकिन तेरा केवल ज्ञान है क्या? वो दूसरे महावीर को तो है ना केवल ज्ञान, तो उससे भिन्न है तेरा आत्मा, वो तो परद्रव्य से भिन्न में चला गया, वो तो परद्रव्य की पर्याय है, वो तो पर में चली जाती है, नहीं चली गई, और तेरा केवल ज्ञान तो अभी है नहीं। तो जो नहीं है उससे भिन्न के लिए तो सम्मान की बात करता है, और जो अभी विद्यमान है राग और उससे उसकी बात नहीं करता है। और दूसरे टोटम जी ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो निश्चयभाषी के प्रकरण में शुरू शुरू में कि जो राग पर्याय विद्यमान है उससे तो अहंकार करता है, और जो केवल ज्ञान पर्याय नहीं है उसे कहते हैं केवल ज्ञान स्वादी। कैसा क्या क्या वो सम्य दृष्टि का ही विचार है सब जो बता रहा हूँ मैं आपको। देखो देखो पदम प्रबंध जी, सीधा देह से भिन्न आत्मा जाने और सम्य दर्शन हो सकता है। हाँ नहीं, वो तो मतलब वो तो सारी सब पर्यायों से बाहर है, जब गहरा अध्ययन करेगा, लेकिन तो भी भजन किस पे दिया है मैं तो इस बात कर रहा हूँ। अभी मैंने तो ये कहा नहीं कि वो उस सहित आत्मा संतुष्टि का विषय है ना, मैं तो ये कह रहा हूँ बार बार कि जो नहीं है वो भी मैं नहीं हूँ, ये बात भी सही है, लेकिन जो है पहले उससे मैं नहीं हूँ ये तो कर है? हाँ हो गया। इसमें देखा दिव्याश्रेव स्वत एव भिन्न भावाश्रय भाव मयो अप्रपन्नो दिव्याश्रेव स्वतमेव भिन्न, कि भावाश्रयों का तो अभाव किया और दिव्याश्रयों से तो स्वतः ही भिन्न है। देखो दिव्याश्रय का तो अभाव करने की बात ही कहाँ है, वो तो कभी एक तू हुआ ही नहीं, लेकिन भावाश्रयों से अभाव करने की बात कलश है मूल भाव ये है आश्रम अधिकार में है। वृद्धाश्रमों से तो स्वतः ये भिन्न और भावाश्रमों से तूने अभाव किया, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि नव तत्वम गतत्व भी नौ तत्वों में वो आत्मज्योति नौ तत्वों में गई तो भी उसने एकत्व को नहीं छोड़ा, जिस एकत्व को नहीं छोड़ा वो एकत्व में अपनत्व कर्तव तेरा काम हो जाएगा, बस खत्म। वो जिसमें गई उसकी बात मत कर, ख्याल है। नव तत्वम गतत्व भी नौ तत्वों में वो गई आत्मज्योति, लेकिन वहां जाकर के भी वो नौ रूप नहीं हो गई, उसने एकत्व को नहीं छोड़ा, समझे ना, उसने एकत्व को नहीं छोड़ा तो तू उस एकत्व में अपनत्व कर, वो जिसमें गई उसमें अपनत्व मत कर। हमने
मोक्ष लिया,
हाँ आगे सब आगे ना,
तो है ही नहीं अज्ञानी को संबर निद्रा मोक्ष है ही नहीं,
वो तो नौ की भेद रूप श्रद्धा की बात कर रहे हैं यहाँ तो की सीधी, वो जो नौ 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 तत्वों में वो गई आत्मज्योति, मन जहाँ है वो नौ तत्वों में, मतलब नौ नौ तत्व उसी की पर्याय है, गई माने उसी की पर्याय है, फिर तो जब मोक्ष में विराग नहीं रहेगा तो फिर आश्रम में नहीं गई, फिर आप मतलब आदि में गई, आदि में नहीं गई, ऐसा गई का मतलब थोड़ी है क्यों है, फिर तो आप ये कहोगे वो कभी नौ तत्व में जाएगी ही नहीं तो मोक्ष में पहुंच जाएगी, तो आश्रम में नहीं जा पाएगी और आश्रम में जाएगी तो मोक्ष में नहीं जा पाएगी, खंडवस्त जैसी हो जाएगी। तो इसलिए ये कहते हैं जो सुन्ना दर्शन कार का नाम है, बहुत सरल शब्द में मैं बोलता हूँ कि जो त्रिकाली जो भगवान आत्मा है ना, पर तो बिल्कुल पूरी तरह से निषेध जिसमें हो गया वो असदूत व्यवहार नए में चला गया है ना, पर का भेद तो हो ही गया। अब अपने में जो गुण भेद प्रदेश भेद और पर्याय भेद समझ लो, बस इस तीनों से रहे जो वो त्रिकाली जो भगवान आत्मा तेरे ज्ञान का घेर बने शुद्ध दय का विषय। देखो अब शुद्ध नए नए विषय बनाया तो उसमें से वो वस्तु में से कोई चीज नहीं हटाई, अपने ज्ञान के घेर में से हटाई बस मैं इसे जानता हूँ और बस उसने उसमें अपनापन कर लिया है, मेरा क्या समझ। देखो कि ये समझ लीजिए कि वो सोना है जिसमें आधा खोट मिली है, तो शराब ने आधा जो उसमें सोना शुद्ध है उसे अपनी संपत्ति मान लिया। और जाने खैर वाली बहू में कह रही हमारे यहाँ 2 किलो सोना है, 2 किलो सोना है, वो कहते एक ही किलो है, सुने ना, क्योंकि वो सोने की मिली हुई चीजों को सोना मानती है। तो पर उसकी दृष्टि में अब उसका एकत्व से 1 किलो में हो गया, खत्म होगी बात, मतलब इतनी सी बात है। अब वो उसमें से निकाल के फेंको ये जरूरत नहीं है, मेरे कहने का मतलब तो उसे अपनी दृष्टि में से निकाल के फेंकना है। तू वस्तु में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, ये पर्याय को निकाला जा सकता है। मैं बोलता हूँ पंचाशिक आय की गाथाएं और ये प्रवचन सार की गाथाएं, बोलो मैंने कुंकुम शतक में 5 गाथाएं दी। हाँ, पर्याय जन्ना त्रिभ हो ना त्रिभ बिन पर्याय हो, दोनों आनंद कहीं से ना ये बात दिन भर ने कही। क्यों 1 सेकंड को मैं पूछता हूँ पर्यायों को निकाला जा सकता, अच्छा गुण के भेद को मेटा जा सकता है। ये ज्ञान है, दर्शन है, जो जानने का काम ज्ञान करता है, देखने का काम दर्शन करता है, इस भेद को मेट सकते हैं। ये वस्तु का स्वरूप नहीं है, पर तुम दृष्टि में मत रख। देखो ये मकान में कितना पैसा आपका लगा है, आप जितना लगा है उतनी संपत्ति के मालिक नहीं हो। तो कितने के मालिक हो, कितना पैसा खड़ा हो सकता है उससे दुगना भी हो सकता है और आधा भी हो सकता है। क्यों 2 कमरे का मकान बनाओ तो दुगना पैसा खड़ा हो जाएगा, और 1 किला बनाओ दिल्ली का तो आधा आधा खर्च कोई बोलो, दिल्ली के किले में बनाने में जितना खर्च होगा कोई खरीदार मिलेगा उसे? तो पैसा मार्केट वैल्यू जिसे बोलते हैं मार्केट, कि लागत मूल्य नहीं, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। और मार्केट वैल्यू माने क्या, कि जब बेचेंगे तब मिलेगा, नहीं अभी बेचो और अभी मिले। एक घड़ी कितने की बोलो, एक घड़ी कितने की समझी, जितने में खरीदार कोई हुए उतने की, जितने में खरीदी थी उतने की नहीं। क्यों तेरी कोई खरीदार ही नहीं मिले, ये पुरानी कारें हैं, अब आकर कोई खरीदार ही नहीं मिलता है, और टाटा की एक लखिया कार आ गई तो फिर क्या होगा। सर वो मुफ्त की भी नहीं है, तुम घसीटते रहो जब तो घसीटते रहो, सर वो तुम्हें तो फेंकना ही पड़ेगी, फिकाई और लगेगी। मूल्य किसको, कीमत किसे कहते हैं, जो उपलब्ध हो सके उसका नाम कीमत है। जो लागत मूल्य है, ये फर्नीचर में ऐसा होता है, फर्नीचर में आपने 25 लाख लगाए, मकान खरीदने वाला आता है तो फर्नीचर की कीमत नहीं देता, मकान की कीमत देता है। वो कहता क्यों, मैं तो तोड़वा के फेंकूंगा, सारा चूजा बनाऊंगा, मैं अपने मन का बनाऊंगा, तुम्हारे मन का क्यों रखूंगा। और साहब वो तोड़वाए चाहे नहीं तोड़वाए, बाद में मिलता क्या नहीं। अब तो घर का भी ऐसा हो गया, खाली जमीन के पीछे ज्यादा मिलते हैं, और मकान बना बनाया हो कब मिलते हैं कि तोड़वाई के पैसा और लगेंगे। मैं 1 करोड़ रुपया कर खर्च करूंगा, 4 करोड़ तो इस घरगुला में रहूंगा, 4 करोड़ जैसे बंगले में रहूंगा ना। क्यों, तो इसलिए कहते हैं पर्याय का मूल्य नहीं है। मैं तो वो जैसे उसकी दृष्टि है ना कि इतने ही देश है, वो घर के मालिक की दृष्टि है कि मैं करोड़पति होगा, मैं लखपति होगा, मैं 5 करोड़ का मालिक हूं। ऐसे मैं त्रिकाली ध्रुव मेरी संपत्ति है, बस खत्म, बाकी कुछ नहीं। उसका नाम है दृष्टि में से निकाल देना, अब उसे घर में से निकालने की जरूरत नहीं है और निकाल सकते भी नहीं हो। देखो मैं एक उदाहरण देता हूं, बहुत सरल है। एक आदमी के पास 3 करोड़ रुपया है और उसके 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों के कितने कितने हैं, 1.5 करोड़ है ना। अब उसकी पत्नी के घर है और अस्पताल से खबर आई कि लड़का हुआ है, तो 1 सेकंड में दोनों भाइयों पर 50-50 लाख का झाड़ा पड़ जाता है। एक पैसा यहाँ से यहाँ हिला रही सबनी के हाथ में है, लेकिन उनके ज्ञान में आ जाता है ना कि मैं करोड़ का मालिक हूँ, अब 1.5 करोड़ का मालिक नहीं। बस इतनी सी बात है, मगर कहीं से कुछ करना नहीं है, तेरे ज्ञान की बात है। तू ज्ञान में जो असली माल है जो कभी नष्ट नहीं होगा, बोले त्रिकाली ध्रुव है, पर कोई मैं हूँ उसमें अपनापन, उसका नाम सम्यक दर्शन है। इसको मैं सरल भाषा में बोलता हूँ, अपने में अपनापन उसका नाम सम्यक दर्शन, और पर पदार्थों में अपनापन उसका नाम मिथ्या दर्शन। इतनी सरल परिभाषा सम्यक दर्शन।